दादाजी की नींद में किडनैपिंग। अब अविनाश को इस तरह से आस्था की नज़रें उतारते हुए देखकर एंजल के दिल में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी और वो उदास होकर तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। अब आगे और वहाँ जाकर वो अपनी सभी ड्रेस अच्छी तरह से चेक करने लगती हैं, लेकिन उसे याद आया कि वो तो एक भी इंडियन ड्रेस अपने साथ में लेकर नहीं आई थी, वो सभी वहीं छोड़कर आ गई थी। अब उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिलहाल वहीं आस्था एंजल को यूं मुंह लटकाकर जाते हुए देख चुकी थी तो वो समझ चुकी थी कि उसे क्या हुआ है, इसीलिए उसने आह भरी और फटाफट से अपने भाई और दादाजी को देखकर बहाना बनाते हुए बोली, आप लोग अंश का ख्याल रखें प्लीज़, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर वो चुप हो गई और सीधा एंजल के कमरे में चली गई, और जैसे ही वहाँ पहुँचकर उसने एंजल की नम आँखें देखीं तो वो उसे संभालते हुए अगले ही पल बोली, क्या बात है भाभी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, आप ठीक तो है ना। तब एंजल ने आस्था को आंसू भरी आंखों से देखा और एकदम से इमोशनल होकर बोली, तुम्हारे भैया ने आज तक कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे लिए किया, मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे भी इसी तरह से एडमायर करें, वो मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन जिस तरह से सब लोग तुम्हें एडमायर करते हैं वैसे मुझे कोई नहीं करता। अब ये सुनकर आस्था थोड़ी सी दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से हंसते हुए बोली, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं हूं ना, और वैसे भी मेरे पास हर चीज़ का सलूशन है, मैं तो सिर्फ आपको गलत साबित करना चाहती थी कि कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कहा था ना कि अगर मैं इस तरह से इंडियन वेयर में वहां जाऊंगी तो सब लोग मुझे अलग नज़रिए से देखेंगे, वो सिर्फ सबकी सोच होती है भाभी, आपने देखा आप भी अब यहाँ पर इंडियन ड्रेस ही ढूंढ रही थी, फिलहाल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी अपने साथ कई साड़ियाँ लेकर आई हूँ और आपके लिए भी लेकर आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ये बोलकर आस्था जल्दी ही एंजल को अपने कमरे में लाई और एकदम डार्क ग्रीन कलर की साड़ी एंजल के लिए निकाली जिस पर हल्का हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क था, वो बेहद खूबसूरत थी। एंजल का गोरा रंग और उस पर जैसे ही वो हरी डार्क साड़ी लिपटी तो उसकी खूबसूरती देखने लायक थी, ऊपर से उसके गहरे भूरे बाल जो उसे सबसे ज़्यादा अलग और ब्यूटीफुल बनाते थे। अब जैसे ही एंजल साड़ी पहनकर बाहर आई वैसे ही उसे देखते ही अविनाश का दिल खुशी से उछलने लगा था, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। वहीं दिग्विजय सिंह जी एंजल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, फटाफट से वो अपनी व्हीलचेयर के सहारे एंजल के पास आए, उन्हें देखते ही एंजल उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी और उन्होंने एंजल के सर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने जैसे थोड़ी देर पहले अविनाश ने आस्था की नज़र उतारी थी और नौकरों को पैसे बांट दिए थे बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उससे भी डबल पैसे उन्होंने सभी नौकरों में बांट दिए। आज तो नौकरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उनकी एक दिन की कमाई उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर अविनाश तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुका था। तभी आस्था अपने भाई को छेड़ते हुए चुपके से बोली, अरे भैया मुंह तो बंद कीजिए। उसकी बातें सुनकर अविनाश एक पल के लिए झेप गया, उसने एंजल को अपनी आंखों में बसाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। आस्था अविनाश को यूं जाता देख खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, फिर उसने चुपके से एंजल को इशारा किया कि वो जाकर एक बार भाई से मिल ले, तब तक वो अंश और दादाजी के साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। ये सुनकर एंजल अपनी मुस्कान दबाए थोड़ा सा शर्माकर सीधा अविनाश के कमरे में चली गई। वहीं अविनाश, जिसकी आंखों के सामने से एंजल सा चेहरा जा ही नहीं रहा था, जैसे ही उसने अपने पीछे एंजल का एहसास किया उसने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्यों, सादगी में भी इतनी प्यारी लग रही हो, अविनाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और हाँ मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा अनरोमांटिक हूँ लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर मैं क्या समझूँ कि तुम चाहती हो मैं उससे भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाऊँ। ये बोलकर अविनाश ने जल्दी ही एंजल के बालों की खुशबू को अपने भीतर उतारना शुरू कर दिया और अपने होठों को एंजल के होठों पर रखकर स्मूच करना शुरू कर दिया। एंजल के होठों से एक हल्की सी मधोशी भरी सांस निकली, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन तब तक अविनाश पूरी तरह आगे बढ़ चुका था और उसे प्यार करने लगा। वहीं आस्था जानती थी कि इतनी जल्दी तो उसकी भाभी वहां से वापस नहीं आने वाली, इसलिए उसने जल्दी ही अपने दादाजी से अंश को अपनी गोद में लिया और उन्हें लेकर गार्डन में आ गई। फिर वो दादाजी की तरफ देखते हुए अपने दिल की बात बताती हैं, दादाजी आपको पता है बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा है वो सब मुझे मिला है, बस जिंदगी में एक ही कसक रह गई है कि मैं अपने हाथों से उस इंसान की जान नहीं ले पाई जिसने मेरे माँ बाप और मेरे परिवार को खत्म किया, लेकिन मैंने उसे बहुत भयानक सजा दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो अगले जन्म लेने के बारे में भी 100 बार सोचेगा। अच्छा लेकिन दादाजी, आस्था ने अचानक कुछ सोचते हुए पूछा, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी, अचानक से आपने उस लॉकेट को बनाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर क्यों लगा दी थी। आस्था उनसे ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई थी, ऐसा क्यों किया था आपने, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो हो सकता था कि उस वक्त हम सब लोग साथ में रहते
और ना ही राजवीर की बीवी की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती और ना ही वो इस लॉकेट को लेने के लिए बेचैन होती। अब आस्था के इस सवाल ने दिग्विजय सिंह जी को पूरी तरह से झकझोर दिया था। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे थे और उनकी आंखों की पुतलियां गोल गोल घूमने लगी थी। अब आस्था सोच में पड़ गई कि अचानक से उसके दादाजी को क्या हुआ। उसने ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ लिया था कि दादाजी इस तरह का अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तब आस्था ने उनके हाथ पर हाथ रखा और उनकी ओर देखकर कोमलता से बोली, क्या बात है दादाजी, आप कुछ छुपा रहे हैं? मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि केवल इस तरह के लॉकेट बनाने के लिए या फेमस होने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। आप इस तरह से सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकते थे? अगर ये लॉकेट नहीं बिकते तो फिर क्या होता? ऑस्ट्रेलिया में तो आप कभी घर बना ही नहीं पाते। आस्था की बात कहीं ना कहीं सही थी, और फिर जिन लॉकेट्स के लिए जिस तरह से मर्डर होना शुरू हुए वो कितना ज्यादा डरावना था, ये बात आस्था अच्छी तरह से जानती थी। फिलहाल वो दिग्विजय सिंह के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वो इस बात का जवाब देना ही नहीं चाहते थे। तब आस्था ने सोचा कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो उसे इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए, वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए उसने उनके हाथ पर हाथ रखा और एकदम से मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं दादाजी, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिग्विजय सिंह ने हिचकिचाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। फिलहाल आस्था अब थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि आखिर इस लॉकेट की कहानी क्या थी। वहीं अंश, जो बेहद सुंदर कपड़ों में था, जिन्हें आस्था कॉम्प्लेक्स ले लेकर आई थी, एकदम राजकुमार जैसा लग रहा था। बार बार अपनी माँ को टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था, कभी उसके मायूस हुए चेहरे को तो कभी उसकी आंखों में झांक रहा था। अंश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कहना चाहता हो, न जाने मेरी मम्मा को बाल की खाल निकालने की इतनी आदत क्यों है, जब देखो रॉ ऑफिसर बन जाती है, इससे अच्छा तो मम्मा ही ऑफिसर क्यों नहीं बन जाती जो इतनी इन्वेस्टिगेशन करती हैं।
फिलहाल आस्था ने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया है और वो जबरदस्ती मुस्कुराने की भी कोशिश कर रहे हैं। दादाजी की सिचुएशन को आसान बनाने के लिए आस्था ने तुरंत अंश की ओर उनका ध्यान केंद्रित कर दिया और उसके साथ खेलने लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे 3 घंटे बाद अरमान को होश आया था। जैसे ही उसे होश आया वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि टाइगर वहीं खड़ा हुआ है। टाइगर को देखकर साफ पता चल रहा था कि पूरे 3 घंटे से वो बस एक ही तरह खड़ा होकर अरमान को देख रहा था। अब अरमान जैसे ही उठकर बैठा उसकी आंखों के सामने और कानों में नानी माँ की बातें फिर से गूंजने लगीं कि मारिया प्रेग्नेंट है और उसकी शादी टाइगर से अरमान ने ही कहवाई थी। अब अरमान एक बार फिर अपने सिर पर हाथ मारकर याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसकी यादें इतनी ज़्यादा कैसे गायब हो सकती हैं जिसका उसे कोई एहसास नहीं है। तभी अरमान ने देखा कि वहां उस वक्त ना तो आकाश, ना सुमित, ना ध्रुव, ना आहान कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और टाइगर को टेढ़ी नजरों से देखकर आदेश दिया, टाइगर अभी और इसी वक्त दादाजी को मेरे सामने लेकर आओ, चाहे वो किसी भी हालत में हो, और याद रखना दादाजी को संभाल कर लेकर आना। अब ये सुनते टाइगर एक पल के लिए चौंका, क्योंकि ये उसके किंग का ऑर्डर था तो वो देर नहीं करना चाहता था। अगले ही पल वो दादाजी के कमरे में मौजूद था। जैसे ही टाइगर वहां गया उसने देखा कि दादाजी तो उस वक्त अपनी बीपी शुगर की गोलियां लेकर गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन ये उसके किंग का हुक्म था तो टाइगर पीछे कैसे हट सकता था। अब देर ना करते हुए उसने दादाजी को सोते हुए ही अपनी गोद में उठा लिया। दादाजी अब नींद में कसम साने लगते हैं, लेकिन टाइगर तो टाइगर था, वो भला अपने किंग का ऑर्डर फॉलो कैसे नहीं करता। वहीं दादाजी को जैसे ही नींद में कुछ अजीब सा लगने लगा उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो किसी नदी नाले में बह रहे हों। तुरंत उन्होंने फट से अपनी आंखें खोल लीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने टाइगर का चेहरा देखा तब वो पूरी तरह से ठिठक गए। वो सोचने लगे आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वे टाइगर से कुछ पूछना चाहते थे कि वो उनके साथ क्या करना चाहता है और वो उन्हें ऐसे उठाकर कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन वो इतने शौक में थे कि वो टाइगर से कुछ बोल ही नहीं पाए। टाइगर का दादाजी के मुकाबले कम से कम 70 से 75 किलो के करीब आसपास का वजन था, लेकिन टाइगर ने तो दादाजी को इस तरह से उठा रखा था मानो जैसे किसी छोटे बच्चे को गोद में उठा रखा हूँ। वहीं इससे पहले कि दादाजी उससे कुछ कह पाते टाइगर ने तुरंत दादाजी को मिनी हॉस्पिटल में लाकर खड़ा कर दिया था। अब दादाजी को टाइगर की गोद में देखकर अरमान इमोशनल कम और स्ट्रिक्ट ज्यादा लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास इमोशंस नहीं आए थे। दादाजी अब अरमान को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए भड़कने लगे, अरे बदमाश ये क्या बदतमीजी थी, और तूने इस नालायक को मुझे उठाने के लिए क्यों भेजा, तू खुद भी तो आ सकता था मुझे उठाने के लिए। इसके बाद दादाजी ने सीधा टाइगर की तरफ रुख किया और एकदम से गुस्से में उससे कहा, और तू, अगर इस नालायक ने मुझे यहाँ बुलाया था तो तुझे इस तरह से मुझे गोद में लेकर आने की क्या जरूरत थी, नॉर्मली इंसानों की तरह चलाकर भी तो ला सकता था ना। अब मुझे समझ में आया कि शारदा बहन थी तुझे इतनी सारी गालियां क्यों देती हैं, नालायक बेवकूफ, क्योंकि तुझमें खुद की तो अकल है ही नहीं।
वहीं नानी माँ, जो कि टाइगर के बारे में हमेशा दादाजी के सामने अपनी सारी भड़ास निकालती थी और जिस तरह से टाइगर उन्हें बात बात पर गोद में उठा लिया करता था, वो सारी बातें कहती थी। अब दादाजी को भी समझ आ गया था कि नानी माँ पर क्या बीतती होगी जब टाइगर उन्हें गोद में उठाकर बाहर छोड़ देता था या फिर यहाँ वहां ले जाता था। फिलहाल अब दादाजी ने नाखुश होते हुए मुंह बनाया और अब वो बिना किसी इमोशंस के वहां खड़े रहे। टाइगर भी वहीं खड़ा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे दो बड़े बड़े पत्थर उनके सामने खड़े हों और वो उनके सामने अपना सिर फोड़ रहे हों। जैसे ही दादाजी को यह एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अरमान को तिरछी नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या बात है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तब अरमान ने तुरंत आंखों से दादाजी को वहां बैठने का इशारा किया। अचानक अरमान ने बड़ी ही डार्क वॉइस में उनसे पूछा, मेरी यादें मुझे नहीं पता किस हद तक गई हैं, लेकिन मैं सारी चीजें अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। मेरी यादें जाने से पहले पहल ऐसा क्या क्या हुआ है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब वो सब आप मुझे बताएंगे। और घर में ये तीनों लड़कियां कौन हैं? और ये सब कब, कैसे, कहां से आईं? इनके बारे में भी आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताएंगे। ये कहते हुए अरमान का चेहरा कठोर हो गया था। ये सुनकर दादाजी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन वो जानते थे कि अगर अरमान को एकदम से पता चलेगा कि उसकी कुछ यादें चली गई हैं, तो सबसे पहले वो यही जानने की कोशिश करेगा कि उसकी जिंदगी में इस बीच आखिरकार ऐसा क्या घटा था जिसका उसे कोई एहसास ही नहीं रहा, जो उसे नहीं पता था, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। क्योंकि अरमान की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि वो किसी के सामने बेवकूफ नजर आ सके, इसीलिए वो सबसे पहले सच जान लेना चाहता था। दादाजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अरमान को शादी के नाम से कितनी ज्यादा चिढ़ है, तो वो चाहकर भी उसे आस्था और अंश के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते थे। साथ ही आहान, ध्रुव और समित की शादी के बारे में भी नहीं बता सकते थे। एक और सच था जो दादाजी अरमान को बताना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से। कुछ सोचते हुए उन्होंने फट से अरमान से कहा, तुझे पता है वो बूढ़ी औरत जिसने तेरे पिता की जान बचाई है, और तेरे पिताजी की जो हालत थी तुझे पता है कितनी बुरी थी? उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों ने मिलकर उनकी जान बचाई और उनकी खूब सेवा की है। तेरी माँ वसुंधरा और उसका बेटा वीर ये कितने दिनों से तुझे परेशान करते रहे, लेकिन तूने सब कुछ ठीक कर दिया। तूने वीर को भी घर में रहने की इजाजत दे दी और साथ ही वसुंधरा को भी बहुत बढ़िया सजा दी है। अब वसुंधरा तेरे लिए नौकरानी की तरह काम करती है। दादाजी के शब्द सुनते ही अरमान के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। दोस्तों, अगर आप ऑब्सेस्ड स्टोरी का ऑडियो सुनना चाहते हैं, देन काइंडली फॉलो करें यूट्यूब चैनल https://youtube.com/@novel006/c।